ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಜ್ ಭಟ್ಟಿ ಕಾ ಚೌಥಾ ದಿನ ಹೈ, ಆಜ್ ಸತ್ಗುರುವಾರ ಹೈ. ಔರ್ ಜಬ್ ಭಟ್ಟಿ ಆರಂಭ ಹುಯಿ ಥಿ, ಜೋ ಭಟ್ಟಿ ಕಾ ಪಹಲಾ ದಿನ ಥಾ, ಕೌನ್ ಸಾ ವಾರ ಥಾ ಉಸ್ ದಿನ? ಸೋಮವಾರ ಥಾ. ಔರ್ ವೋ ಸಿರ್ಫ ಸೋಮವಾರ ನಹೀ ಥಾ, ಲೇಕಿನ್ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಅಮಾವಸ್ಯಾ ಕಾ ಭಿ ದಿನ ಥಾ. ಹೇನಾ, ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ ಮೇ ಪೂರೆ 12 ಮಾಸ ಮೇ 12 ಅಮಾವಸ್ಯಾ ಆತಿ ಹೈ ಔರ್ 12 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹೋತಿ ಹೈ. ಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಾನಾ ಜಹಾ ಚಂದ್ರಮಾ ಪೂರಾ ಖಿಲಾ ಹೋಗಾ, 16 ಕಲಾಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಔರ್ ಅಮಾವಸ್ಯಾ ಮಾನಾ ಜಹಾ ಚಂದ್ರಮಾ ದಿಖಾಯಿ ನಹೀ ಪಡೆಗಾ, 9 ಕಲಾ ಹೇನಾ, ಯಹಿ ಕಹತೆ ಹೈ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಕಿ ವೋ ಅಂತಿಮ ತಿಥಿ ಅಮಾವಸ್ಯಾ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕಿ ಅಂತಿಮ ತಿಥಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಔರ್ ಹಮ್ ಸಭಿ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ ಚಂದ್ರಮಾ ಕೋ ಶಿವ ಕಾ, ಸಾರಿ, ಶಿವ ಸೇ ಭಿ ಜೋಡ್ತೆ, ಸೋಮವಾರ ಕೋ ಶಿವ ಸೇ ಭಿ ಜೋಡ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಚಂದ್ರಮಾ ಕೋ ಭಿ ಮತಲಬ್ ಸೋಮವಾರ ಸೇ ಜೋಡ್ತೆ ಹೈ. ಸೋಮವಾರ ಕಾ ದಿನ ಶಿವ ಕಾ ದಿನ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಐಸೆ ಹಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾ ದಿನ ಚಂದ್ರಮಾ ಕಾ ಭಿ ದಿನ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಆಜ್ ಜೈಸೆ ಕಿ ಬಾಬಾ ನೇ ಕಹಾ ಕಿ ಇಸ್ ಸಂಗಮ ಪರ್ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಕೌನ್ ಸಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಚ್ಛಿ ರೀತಿ ಪತಾ ಹೈ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ, ಶುದ್ರ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಸೇನಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯುದ್ಧ ಕಾ ಮೈದಾನ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಔರ್ ತುಮ್ಹಾರೇ ಲಿಯೆ ಯುದ್ಧ ಕಾ ಮೈದಾನ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಯೇ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಸಿ ಸಂಗಮ ಪರ್ ಹಮ್ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ, ಸತ್ಯುಗ್ ಮೇ ಔರ್ ಕಲಿಯುಗ್ ಮೇ ನಹೀ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಇತ್ನಾ ಹಿ ನಹಿ, ಬಾಬಾ ನೇ ಯಹಾಂ ತಕ್ ಭಿ ಕಹಾ ಕಿ ಜೈಸೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಔರ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕರೆ, ತೋ ಜೈಸೆ ಹಿ ಹಮ್ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಆತೆ ಹೈ, ತೋ ಹಮೇ ಜಬ್ ಯೇ ಜ್ಞಾನ ದಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಶುರುವಾತ್ ಮೇ, ತೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹಮ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಹಿ ಬತಾತೆ ಹೈ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಕೋ. ಕೈಸಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬತಾತೆ ಹೈ? ಕಹತೆ ಹೈ ದೇಖೋ, ಮಂದಿರ ಮೇ ಜಾತೆ ಹೈ ತೋ ಚಪ್ಪಲ್ ಉತಾರ ದೇ. ಕ್ಯೋ ಉತಾರತೆ ಹೈ? ವೋ ಸಬ್ ಆಪ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ, ಇಸ್ಕಾ ಆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ. ಟೀಕಾ ಲಗಾತೆ ಕ್ಯೋ ಲಗಾತೆ ಹೈ? ಉಸ್ಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ. ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಹಮ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಹಮ್ ಜೋ ಕುಚ್ ಭಿ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಸೇ ಕರ್ ರಹೇ ಥೆ, ಜಬ್ ತಕ್ ಬಾಬಾ ನಹಿ ಆಯೆ ಥೆ ಹಮಾರೆ ಜೀವನ ಮೇ, ಹಮ್ ಭಿ ವೈಸಾ ಕರ್ ರಹೇ ಥೆ. ಲೇಕಿನ್ ಬಾಬಾ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ವೋ ಸ್ಥೂಲ ಚೀಜೆ ಜೊ ಹಮ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಕರ್ ರಹೇ ಥೆ, ಉನ್ಕಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಬಾಬಾ ನೇ ಆಕರ್ ಹಮೇ ಸಮಝಾಯಾ. ಜೈಸೆ ಹಮ್ ಕಹತೆ ಹೈ ನಾ ಕಿ ಟೀಕಾ ಕ್ಯೋ ಲಗಾತೆ ಹೈ, ಆತ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಮೇ ಟಿಕನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಟೀಕಾ ಲಗಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಹಮ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ದೀಪ ಜಲಾತೆ ಹೈ, ದೀಪ ಕ್ಯೋ ಜಲಾತೆ ಹೈ? ವೋ ದೇಖ ಕರ್ ಆತ್ಮ ದೀಪ ಜಗಾನಾ ಥಾ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ವೋ ಜಲಾತೆ ಹೈ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ನಾರಿಯಲ್ ಫೋಡ್ತೆ ಹೈ, ನಾರಿಯಲ್ ಕ್ಯೋ ಫೋಡ್ತೆ ಹೈ? ಕಿ ಜೋ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಹೀ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ತೋಡೋ, ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ರಿಯಲ್ ಮಿಲೇಗಾ. ಐಸೆ ಯೇ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ರಿಯಲ್ ಹೈ, ಇಸ್ಕೋ ಛೋಡೋ, ಇಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಆತ್ಮ ಬೈಠಿ ಹೈ, ಉಸ್ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸೇ ಜಿಯೋ. ತೋ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ? ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಔರ್ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಕಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕೋ ಸಮಝ ಸಮಝ ಕೆ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಪರ್ ಆಗೇ ಬಢ್ತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಐಸಾ ಹಿ ಹಮ್ ಚಾಹೆ ರಾಖಿ ಪರ್ ಭಾಷಣ ಕರ್ನೆ ಜಾಯೆ, ಹೋಲಿ ಕೆ ತ್ಯೋಹಾರ ಪರ್ ಕರ್ನೆ ಜಾಯೆ, ಕ್ಯೋಕಿ ಹಮೇ ತೋ बाबा का ज्ञान जन जन तक पहुंचाना है। और बाबा कहते हैं कि मंदिरों में खास जाओ, जो मेरे भक्त होंगे उनको ये जल्दी बात लग जाएगी। तो भक्त तो भक्ति में रंगे हुए हैं, और इसलिए भक्ति में तुम क्या करते हो वही बातें उनके सामने उजागर करके उनको बताते हैं कि देखो इसका सूक्ष्म भाव ये था, है ना। राखी हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, हम ऐसे ऐसे पर्व के दिन आते हैं और हम जैसे ब्राह्मणों के लिए आम जनता की सेवा करने का मार्ग खुल जाता है। इस पर्व के नाम से उस पर्व की कहानी सुनाएंगे और उसका आध्यात्मिक विवेचन करेंगे और उनको बात समझ में आ जाएगी। तो ऐसे ही जो हमने कहा आज मुरली में भी बाबा ने और एक बात उठाई कि कृष्ण को क्या दिखाते हैं, पीपल के पत्ते पर सागर पर तैरता हुआ, अंगूठा चूसता हुआ, ये स्थूल में दिखाया, लेकिन वास्तव में ये प्रतीकात्मक भाषा है कि बाबा ने कहा कि वहां गर्भ महल होगा, मतलब वो कंफर्ट जोन में होगा महल में होते हुए भी। तो कैसे दिखाए, तो अंगूठा चूसता हुआ। पीपल का पत्ता क्यों, कि नए भारत में, नए भारत का शेप लगभग वैसा होगा। फिर कहा कि सागर में तैरता हुआ, तो बच्चा अंदर गर्भ में पानी में तैर रहा होता है। तो वो प्रतीक दिखाए गए हैं ताकि उन प्रतीकों के आधार से वो सूक्ष्म बातें हम समझ सके जो इन आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इन आंखों से तो स्थूल ही देखा जाएगा, सूक्ष्म तो नहीं देखा जाएगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, फ्रॉम नोन टू अननोन, जो जानते हैं उसको समझकर जो नहीं जानते हैं उसको समझना, यही किया सारा समय जैसे ही हम ज्ञान में आए। तो ऐसी ही जो हमने कहा कि जब आप आए, भट्टी का पहला दिन सोमवार का दिन भी था और वो सोमवती अमावस्या का भी दिन था। जेठ मास चल रहा है, नौ तपे पूरे हुए कि चल रहे हैं, 25 तारीख को शुरू हुए थे ना नौ तपे, तो मतलब जेठ माना नौ तपा माना भीषण गर्मी। हाँ, तो जेठ की अमावस्या माना जो 12 अमावस्या होती है एक एक मास में, तो मास उसके साथ जोड़ देते हैं, जेठ की अमावस्या बोल दिया। लेकिन अगर वो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ गई तो फिर कहते हैं सोमवती अमावस्या, और उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और इस बार तो कहा, मतलब न्यूज आदि में, ये 30 साल के बाद, 30 तारीख को था सोमवार, और कहा 30 साल के बाद ऐसा संयोग बना है कि सोमवती अमावस्या है, वट सावित्री व्रत है, शनि जयंती है, और इसलिए बहुत इसका जो फल है वो शुभ है, ऐसा उन्होंने बताया। अब इसमें होता क्या है, व्रत रखते हैं, किस लिए व्रत रखते हैं, सुहाग के लिए, सौभाग्य के लिए। हम विशेष करके स्त्रियां व्रत रखती है, उनका सौभाग्य अखंड रहे, उनके पति की आयु लंबी रहे। तो कई बार दुनिया में भी कहते हैं क्यों हमेशा पत्नी ही करे पति के माना लंबी आयु के लिए, क्या पति नहीं करेगा पत्नी के लिए, ऐसे बोलते हैं ना। परंतु ये भी प्रचलन कहाँ से निकला, वो सूक्ष्म में से निकला है। ये तो स्थूल रूप में पति पत्नी है ना, लेकिन बाबा के हिसाब से अगर हम देखें तो बाबा कहते हैं परमात्मा हमारे साजन है और आत्मा हम सजनीय है, ऐसे कहते हैं ना। और ऐसे ही कल की मुरली में भी था कि विवेक कहता है, है ना, विवेक कहता है, ये विवेक कौन है जो कहता है, क्यों नहीं हम कहते आत्मा कहती है, विवेक कहता है, क्या भाव है इसका, विवेक कहता है। और बाबा ये भी कहते हैं कि जब बाबा आते हैं, आते ही हर बच्चे को क्या दे देते हैं, दिव्य बुद्धि दे देते हैं, दिव्य नेत्र दे देते हैं, दिव्य चक्षु देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, ऐसे कहते हैं ना बाबा। और आज ये वरदान में क्या कहा बाबा ने, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाओ, है ना, तो सफलता मिलेगी। विश्लेषण में कहा कई बच्चे क्या करते हैं, बुद्धि रूपी लॉकर में रख देते, लॉकर में रख देते हैं। नहीं, कई बार बाबा मुरलियों की स्टडी करेंगे तो बुद्धि की तुलना कभी कलश से करते हैं, कभी तिजोरी से करते हैं, कभी अलमारी से करते हैं, कभी पात्र से करते हैं। हाँ, कई बार कहते हैं ना बाबा कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता, और ऐसा कहकर बाबा कहते हैं ये दिव्य ज्ञान भी कौन सी बुद्धि में ठहरेगा, बुद्धि अगर स्वच्छ होगी तो उसमें ठहरेगा। तो बाबा दिव्य बुद्धि देते हैं, मतलब क्या, बुद्धि का गठबंधन दिव्य ज्ञान से करा देते हैं। जब तक बाबा हमारे जीवन में नहीं आए तब भी तो हमारे पास बुद्धि है या नहीं है, बिना बुद्धि के जी रहे क्या हम, बुद्धि है या नहीं है। आज जो कलयुग में जी रहे हैं, समझो हम तो संगम पे आ गए तो बाबा ने हमको दिव्य बुद्धि दे दी है, जो कलयुग में उनके पास बुद्धि है नहीं है। हाँ, मटेरियलिस्टिक बुद्धि है। देखो रस्सा खींच खेला जाता है, रस्सी एक होती है लेकिन उस रस्सी के दो छोर होते हैं और दोनों छोर पर दो टीम खड़ी हो जाती है और एक छोर को एक टीम अपने तरफ खींचती है, दूसरे छोर को दूसरी टीम अपने तरफ खींचती है। जो टीम ज्यादा शक्तिशाली रस्सी उसकी हो जाएगी। ऐसे ही बुद्धि, जब तक बाबा ने दिव्य ज्ञान नहीं दिया था तो बुद्धि में क्या भरा था, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मटेरियलिस्टिक नॉलेज, इंद्रियों के माध्यम से अंदर डेटा गया, बुद्धि में स्टोर हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, दो और दो कितने होते हैं, चार होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं, हाँ पक्का पक्का, तो मैं रॉन्ग या आप रॉन्ग, दोनों में से कोई एक गलत होगा ना, कौन गलत बताओ। अभी मैं कहती हूँ दो और दो पांच होते हैं और आप कहते हो दो और दो चार होते हैं, तो कौन राइट और कौन रॉन्ग। नहीं नहीं, दोनों में एक रॉन्ग है एक राइट है, अब राइट कौन है रॉन्ग कौन है ये बता दो। हम बहन जी रॉन्ग है ना, नहीं सचमुच। हाँ देखा, हम यही निकलवाना चाहते थे कि हम कोई भी चीज का डिसीजन किस आधार से लेते हैं, जो डेटा मेरे अंदर भरा पड़ा है। आपने अगर दो और दो चार कहा तो कहाँ से पता चला, छोटे बच्चे को पूछेंगे मालूम, बोलेंगे मालूम नहीं, लेकिन आपने चार को सही बोला पांच को रॉन्ग, क्यों, वो डेटा स्कूल में हमने पढ़ाई की, वो डेटा अंदर स्टोर हो गया, अब वो आधार बना निर्णय देने का कि दो और दो चार सही है या सही नहीं है। तो दुनियावी डेटा जो बुद्धि में गया था उसके आधार से हमारे निर्णय होते थे। ये तो सिर्फ दो और दो चार एक एग्जाम्पल लिया। हाँ, दुनियावी ज्ञान, ये मेरी माँ है, ये मेरा पति है, ये मेरी बेटी है, लेकिन बाबा ने आके क्या कर दिया, सारा डिसॉल्व कर दिया। किसको माँ कह रहे हो, किसको बाप कह रहे हो? हाँ, आत्मा है ये एक जो तुम्हारे साथ माँ के रोल में है, तो फर्क समझ में आ रहा है ना। तो एक होता है मटेरियलिस्टिक नॉलेज और एक होता है डिवाइन नॉलेज। तो बुद्धि एक है, इधर दुनिया क्या दे रही है, मटेरियलिस्टिक नॉलेज, माया क्या दे रही है, मायावी नॉलेज, इधर भगवान क्या दे रहा है, डिवाइन नॉलेज। तो अगर बुद्धि को इधर रावण खींचने में सफल हो गया तो किसके साथ गठबंधन हो गया बुद्धि का, और अगर ये खींचने में सफल हो गया तो ये ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान है ना, यही विवेक है। देखो हम क्या कहते हैं, आत्मा के साथ गुण बताते हैं ना पहले लेसन में, एक गुण क्या है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ना, कौन सा ज्ञान है मेरे पास, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, कल्प वृक्ष का, योग का, इस प्रकृति का, कि ये आत्मा से अलग है। समझ में आ रहा है ना, तो यही विवेक है, ज्ञान स्वरूप होना ही विवेक है। और तब कहते हैं विवेक कहता है, तो दिव्य ज्ञान के आधार से ये भले एक बहन है, लेकिन फिर भी एक क्या है, बहन से पहले एक आत्मा है। लेकिन मटेरियलिस्टिक नॉलेज के आधार से एक फीमेल चोले में तो बहन ही है ना, ये तो और कौन है ये, और मेरे साथ इसका रिलेशन भाभी ननद वॉट एवर, तो वही कहेंगे ना हम। तो समझ में आ रही बात। तो अगर हमारी बुद्धि का गठबंधन विवेक के साथ हो गया, इसको ही तो शादी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, इसको ही तो शादी बोलेंगे। तो अगर गठबंधन इसका मजबूत होगा तो बुद्धि को कौन गाइड करता रहेगा, विवेक, दिव्य ज्ञान गाइड करता रहेगा। और मतलब वो दिव्य ज्ञान बुद्धि में भरता जाएगा और फिर वो बुद्धि उसको आचरण में लेकर आए, जो बाबा ने कहा कि लॉकर में सिर्फ नहीं रखो लेकिन उसको प्रैक्टिकल फील्ड में यूज करो। यूज करने से सफलता है, अगर लॉकर में पड़ा रहे, यूज किया नहीं तो सफलता थोड़ी। बैंक में खूब सारे पैसे रखे हुए, सोना भी पड़ा है लॉकर में, इधर गरीबी के दिन आ गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ खुश हूं कि मेरे बैंक में पड़ा है। क्या मतलब ऐसा बैंक में पड़े होने का, समझ में आ रही है ना बात। आचरण में, व्यवहार में, प्रैक्टिकल में यूज हो। तो दो प्रकार के सुहाग हो गए कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, ये भी एक सुहाग है, और बुद्धि का दिव्य ज्ञान से कनेक्शन, ये भी एक सुहाग है। अब हम देखें, अब बुद्धि क्या है, स्त्री या पुरुष, बुद्धि शब्द में क्या है, फेमिनाइन वर्ड है ना, स्त्रीलिंग शब्द है ना, और विवेक, विवेक शब्द कौन सा है, कौन सी लिंग है, ये पुरुष लिंग, पुल्लिंग, और बुद्धि स्त्रीलिंग। विवेक स्वामी है, बुद्धि स्वामिनी है। तो हमेशा बुद्धि को दिव्य ज्ञान के साथ कनेक्शन रखना होगा या नहीं, तो बुद्धि को ही तो अपने सुहाग के लिए व्रत करना पड़ेगा या नहीं। और दुनिया में हमने कह दिया नहीं, पत्नी को ही करना है, पति क्यों करे, समझ में आई बात। बात है बुद्धि के अंदर की, ये पत्नी की बात नहीं, यहाँ पे बुद्धि पत्नी हो गई, विवेक क्या हो गया, पति हो गया। और दूसरे रीति से आत्मा पत्नी और परमात्मा साजन ना, तो फिर आत्मा को ही तो उसके साथ जुड़े रहने के लिए व्रत रखना पड़ेगा ना, किसको रखना पड़ेगा, आत्मा को रखना पड़ेगा, बुद्धि को विवेक के लिए रखना पड़ेगा। तो कहते सोमवती अमावस्या के दिन क्या करते हैं, स्त्रियां अपने सुहाग को, अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए इसकी इस दिन व्रत करती है। और इस व्रत का नियम क्या होता है कि जैसे हर व्रत में कोई ना कोई कथा एक आवंटित की गई है कि ये इस व्रत की कथा है, और वो कथा पढ़ी जाती है, जैसे सत्यनारायण की कथा भी होती है, कितनी सारी होती है ना, हर एक में अलग अलग कथाएं होती है, परंतु उसके भावार्थ को हम पकड़ते नहीं है, लेकिन हम उसमें क्या लिखा रहता है, फलाने ने ऐसे किया था, अब तुम भी ऐसे करना, पर क्या किया था वो डिटेल पता नहीं है। तो इसकी भी कथा में क्या आता है कि एक ब्राह्मण दंपति होते हैं और उनकी एक पुत्री होती है, साथ पुत्र भी होते हैं और पुत्री भी होती है, और उनके द्वार पर एक जोगी भिक्षा लेने आता है। तो सातों जो पुत्र है उनकी शादी हो चुकी है, तो बहुएं उनको भिक्षा देती है, और भिक्षा के बदले में वो भिक्षुक जो जोगी आता है उनको सौभाग्यवती भव का ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है। एक बार माँ कहती पुत्री तुम भी जाओ, उसकी शादी नहीं हुई है, पुत्री तुम भी जाओ, वो जाती है, लेकिन उसको वो धर्मवती भव का ब्लेसिंग देता है, उनको सौभाग्यवती, इसको धर्मवती। माँ को लगता है कि कन्या अभी कुमारी है, उम्र हो गई है, इसकी भी शादी हो जानी चाहिए, तो जोगी ने इसको भी वही वाला वर देना चाहिए जो बहुओं को मिल रहा है, इसलिए जाके जिज्ञासावश पूछा कि आपने उनको तो सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया और पुत्री को धर्मवती का क्यों? तो कहा कि आपकी जो पुत्री है ना, उसके जीवन में सुहाग तो लिखा है लेकिन बहुत अल्पकालीन है, वो बहुत जल्दी उसके जीवन में वैधव्य का योग भी लिखा है, माना सुहाग आएगा उसके जीवन में लेकिन तुरंत ही फिर विधवा हो जाएगी, और इसलिए मैं उसको सौभाग्यवती का वरदान नहीं दे रहा हूँ, धर्मवती का दे रहा हूँ, ताकि ये धर्माचरण करते रहे। तो माँ कहती है कि चलो ये भी बात मान ली जाए कि इसके भाग्य में ऐसा लिखा है, परंतु उसका कोई उपाय भी तो होगा ना, भाई वैधव्य योग है तो मिटाने का कोई उपाय भी तो होगा या नहीं होगा? कहा सोच के अंतर ध्यान होके कहा है उपाय, तो क्या उपाय है? तो कहा कि सात समंदर पार सीहल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, अगर वो आकर इसको सुहाग का ब्लेसिंग दे तो फिर ये अखंड सौभाग्यवती बन सकती है, जो खुद सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। लेकिन वो रहती किधर है? सात समंदर पार, और वो जाती नहीं है कहीं पर भी, इसलिए तुमको जाना होगा, ये सिर्फ उसके पास जाके उसकी सेवा करे, क्योंकि वो कहीं जाती नहीं है, तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसकी सेवा से उसको राजी खुशी करना पड़ेगा, और राजी खुशी होकर तो प्रसन्न होकर कोई भी वरदान देता ही, ऐसे ही कहानियां होती है हमेशा, तो वो खुश होकर फिर इसको दे देगी, तो फिर ये भी अखंड सौभाग्यवती बन जाएगी। अब ये कथा है, इसका आध्यात्मिक विवेचन कि पुत्री जो है धर्मवती है, मतलब धर्म को धारण करती है, जो आज बाबा ने कहा बुद्धि रूपी लॉकर में रख दिया है। हम ब्राह्मण की पुत्री है ना, मतलब कौन है ये ब्राह्मण, हम ही है, और बुद्धि रूपी लॉकर में ज्ञान मिला है उसको पैक करके रख दिया है, और क्या कहा धर्माचरण करना पड़ेगा। जब तक उस ज्ञान को आचरण में नहीं लाएंगे तब तक क्या होगा, कोई भी चीज पड़े पड़े क्या हो जाती है, रस्ट लग जाती है, लूज हो जाती है। इफ यू डोंट यूज यू लूज इट, यही कहते हैं ना। हमारे पास पहले थी शक्ति, हम फोन नंबर याद करके रखते थे, लेकिन हमको मोबाइल वालों ने सुविधा दे दी तो अपना भी नंबर याद नहीं रहता है। नहीं तो पहले याद रहता था, नहीं रहता था, अभी सब कुछ फीड है तो याद ही नहीं रहता है। तो यूज नहीं कर रहे हैं तो लूज कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा ने भले ज्ञान दे दिया हमें, इसीलिए पहले दिन भी यही कहा था ना, ज्ञान हम सबके पास बहुत हो चुका है, ऑनलाइन सेवाओं के बाद विशेष करके बहुत बुद्धि में ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन उसके स्वरूप बनने की आवश्यकता, अर्थात उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाने की आवश्यकता है। तो क्या धर्मवती है, मतलब धर्म धारण किया लेकिन धर्माचरण नहीं है अभी। तो जैसे कहा कि आचरण में अगर नहीं है तो लूज कर जाएंगे, तो मतलब कि विवेक से कनेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर दिव्य बुद्धि को प्रैक्टिकल में यूज, क्योंकि दिव्य बुद्धि माने कि सादा से बुद्धि दिव्य बनी, विवेक से दिव्य ज्ञान मिला, अब उसको यूज ही नहीं कर रहे तो विवेक के साथ मेरा कनेक्शन बना रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा कि शादी होते ही वैधव्य आ जाएगा, तो हमारे जीवन में भी क्या आता है, बाबा का ज्ञान आता है, विवेक मिल जाता है, थोड़ा समय लाइफ एंजॉय करते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, वही मटेरियलिस्टिक नॉलेज के आधार से चलते हैं, वही बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है, आ गया वैधव्य योग। लेकिन अगर ये वैधव्य योग मिटाना है तो फिर सोमा धोबन के पास जाना पड़ेगा, अर्थात विवेक के साथ मेरा सदा कनेक्शन बना रहे, मेरा सुहाग सदा कायम रहे, और ये सुहाग कायम रहेगा तो आत्मा परमात्मा वाला भी सुहाग डेफिनेटली कायम रहेगा। तो अब सात समंदर पार रहती है सोमा धोबन, वो सोमा धोबन है कौन पहले ये बताए। धोबन का मतलब क्या होता है, धोबन का मतलब होता है जिसके पास मैले कपड़ों की भरमार होगी, धोबन के पास मैले ही कपड़े छोड़ेंगे और क्या करेंगे, जिसके पास मैले कपड़ों का जमावड़ा होगा और उसको उन मैले कपड़ों को साफ कर करके वापस रिलीज कर देना होगा तो ही उसको धोबन बोलेंगे, नहीं तो वो धोबन थोड़ी हुई है ना। तो जैसे ये शरीर के ऊपर हमने ये वस्त्र पहना है, ये शरीर के ऊपर ये वस्त्र पहना है, ऐसे ही आत्मा के ऊपर कौन सा वस्त्र है, और भी क्या है, कुछ है बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में कुछ है या नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है इसके बीच में, नहीं नहीं ये तो शरीर हो गया ना, शरीर और आत्मा के बीच में सूक्ष्म शरीर, तभी तुम फरिश्ता बनते तो क्या करते, कौन सी कमेंट्री होती है, मैं आत्मा फरिश्ता बनकर इसमें से निकल रही हूं, यही बोलते हैं ना, तो मतलब आत्मा और इस शरीर के बीच में कौन है? क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? और सूक्ष्म शरीर माना ही क्या? मन बुद्धि चित्त यही तो है और क्या है? चित्त ही तो है और क्या है? तो आत्मा के ऊपर चित्त रूपी चादर है जिसको ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर करती हूं। एक बल्ब है, उसमें फिलामेंट है और उसके चारों तरफ कांच की कवरिंग है, आवरण है। आपने स्विच ऑन किया, कौन प्रकाशित हुआ? फिलामेंट प्रकाशित हुआ। फिलामेंट प्रकाशित हुआ, वो प्रकाश, प्रकाश का स्वभाव है गमन करना, ट्रैवल करना। तो प्रकाश चलना आरंभ किया, चलते चलते रास्ते में उसको कांच मिल गया। लेकिन कांच कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। तो कांच उसको भेदता हुआ बाहर आया, तो कांच को भी प्रकाशित कर दिया और कांच से बाहर भी निकल कर आया। तो ये फिलामेंट है आत्मा समझो, और ये कांच का आवरण है सूक्ष्म शरीर चित्त। एक गीत आता है भक्ति मार्ग में, मैली हो गई चादर द्वार तेरे कैसे आऊं। मैली चादर ओढ़ के द्वार तेरे में कैसे आऊं। तूने भेजा जग में देखकर निर्मल काया, जग में आकर मैंने इस पे दाग लगाया। सुना है ना ये गीत? तो कौन सी चादर की बात है? अगर ये चादर होती इसको तो पता नहीं कौन कौन सा सोप लगा लगा कर सारे दाग मिटा देते। चेहरे के पिंपल्स, ये वो, कलर भी शायद वो नहीं होगा, लेकिन क्या क्या लगा के चमका देते हैं, फियर एंड ब्यूटी बना देते हैं। तो फिर कौन से चादर की बात हो रही है? डेफिनेटली ये चादर की बात नहीं हो रही। तब कहा कि आत्मा के ऊपर चित्त रूपी चादर जो है उसकी बात चल रही है, कि वो चादर निर्मल दी थी। हाँ, जैसे पारदर्शी कांच था, फिलामेंट जैसे जला स्विच ऑन करते ही, तो पूरा बल्ब का जो कांच का आवरण था वो भी एकदम प्रकाशित हो उठा, शुभ्र। जैसा वो प्रकाश था वैसा शुद्ध वो भी प्रकाशित हो गया। लेकिन बल्ब इस जगत में है तो धूल मिट्टी उसके ऊपर चढ़ रही है, और विशेष करके किचन के उस हिस्से में लगाए जहां छौंक चल लग रहे हैं, जहां भजिए तले जा रहे हैं, कुकर की सीटियां बज रही है, उस कांच का क्या हाल होगा? उसकी पारदर्शिता क्या होगी? क्या होगी? ढक जाएगी, धुंधली हो जाएगी। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया बहुत दिनों तक, तो एक दिन आएगा बल्ब जलाया, रोशनी नहीं, क्या हो गया? उस कमरे में तो लाइट है, इस कमरे में क्या हो गया? देखता हूं थोड़ा बल्ब को हाथ लगा के, चढ़ते ऊपर, अरे अरे क्या है, कपड़ा तो देना। और जैसे ही थोड़ा लगा था ना हाथ, जहां पर भी, जहां से निकल गया था ना, वहां से रोशनी दिख गई थी, वहां से रोशनी दिख गई थी, क्योंकि अंदर तो रोशनी थी, ये बाहर तो दाग धब्बे मलिनता जो चढ़ गई है वो बाहर आने नहीं दे रहा है उसको। तो ये चादर चित्त, यही धोबन, इसके ऊपर दाग चढ़ रहे हैं। बॉडी कॉन्शियस में आ आकर हम जितने भी कर्म कर रहे, पहले दिन ही हम जब लेसन देते हैं हम बताते हैं आत्मा के पास तीन फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है, फिर कर्मेंद्रियां उस निर्णय को प्रैक्टिकल में कर्म में लाती है, और हर कर्म जो हम करते हैं उसका इम्प्रेशन आत्मा पर पड़ता है। यही सिखाते पहला लेसन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इम्प्रेशन ऑन सोल। अब बॉडी कॉन्शियस में जो कर्म किया होगा उसका इम्प्रेशन उजला होगा, धुंधला होगा, मटमैला होगा, बोलो कैसा होगा? तो कितने जन्मों से हम बॉडी कॉन्शियस में आए हुए हैं, उचित जो निर्मल काया थी, बिल्कुल साफ सुथरी चादर थी, कलयुग के अंत में आते आते कितनी मैल का जमावड़ा है वहां पे, और इसीलिए तो प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है। फिर बाबा ने आके थोड़ा ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बल पर, जैसे कहा ना बल्ब को थोड़ा हाथ लगाया तो थोड़ी सी चिकनाई उसकी निकल के इधर आ गई, वो वहां से किरण दिखने लगी, अरे 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 लाइट तो है, इसको साफ करना पड़ेगा। तो बाबा ने जैसे ही ज्ञान दिया, और जब नए नए होते हैं ना तो 100% हम एक्यूरेटली फॉलो करते हैं ना शुरू में, तो डेफिनेटली जब करते हैं तो थोड़ी सी मैल क्या हो जाती है उसकी, उखड़ जाएगी। तो किरण दिखेगी या नहीं दिखेगी? दिख जाती है। फिर ढीले पड़ जाते हैं, फिर ऐसी भट्टियां रखनी पड़ती है। भट्टी रखने का यही तो पर्पस है, और क्या है? और इसीलिए बार बार क्यों कहा जा रहा है, मौन धारण करिए। और मौन धारण करना मन ही अंतर्मुखी हो जाना, बाह्य जगत को पीठ, अंतर जगत को फेस। जब मौन में नहीं है तो अंतर जगत को पीठ, बाह्य जगत को फेस, यही है ना? तो क्यों अंतर्मुखी होना है? तो कहा वो सोना दो बिन है ना, सात समंदर पार रहती है। समझ में आया? सात समंदर पार कहाँ रहती है? अंतर जगत की बात है। अंतर जगत में जब तक नहीं जाओगे सोना धोबन से मुलाकात नहीं होगी। तभी कहा कि मौन में एकांत का समय क्यों दिया, 10 से 10:30, कोई कमेंट्री नहीं कराई जाएगी, लेकिन जो क्लासेस हो रही है, जो मुरली सुन रहे हैं, उसको एकांत में बैठकर उसके आधार, उसको आधार बना के चेकिंग करो। तो अंतर जगत में जाओ, ये है सोना धोबन के पास जाना, सात समंदर पार। तो मुश्किल तो लगता है ना, कितनी बार बोलना पड़ता है अंतर्मुखी हो जाओ, मुश्किल है ना सात समंदर पार जाना, लेकिन बार बार का अभ्यास सफलता देता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ के नियम जो आपको डायरेक्शन दिए वो नहीं फॉलो कर रहे, हम जानते हैं इंसान संस्कारों के वश चलता है, हमारी आदत है बात करने की, आवाज में आने की, भल हमने ये मन में सोचा भी है कि हम मौन में हैं, फिर भी आदत हमको क्या कर देती है, वाचा में लिख कर आती है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। तो रोज का थोड़ा थोड़ा अटेंशन बार बार अपने आप को दिलाते 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 हम अंतर्मुखी होने में सफल होते हैं। उपवास रखते हैं ना कई बार, भक्ति मार्ग में तो व्रत की बात है ना, तो क्या उपवास वाले दिन भूख नहीं लगती है क्या? जहाँ दिन भर तीन टाइम खाना और बीच बीच में भी कुछ कुछ चाहिए, और अचानक से आज व्रत आया है, सोमवती अमावस्या है, भाई मेरा अखंड सौभाग्य है आज मुझे व्रत रखना है, तो व्रत तो रखा क्या, भूख नहीं लगेगी क्या? भूख लगेगी, लेकिन ये जो संकल्प किया है आज मेरा व्रत है और ये व्रत करूंगी इसका बहुत अच्छा फल मुझे मिलेगा, ये संकल्प अंदर में रिवाइज करते जाते हैं और ये संकल्प मुझे ताकत देता है अपने भूख को टालने की। वरना भूख तो लगती है, क्यों नहीं लगेगी भूख? और एक समय जब आ जाएगा टालते टालते फिर भूख मिट जाएगी। बस ये भी ऐसा ही होगा कि बार बार अटेंशन, बार बार अटेंशन, मुझे मौन में रहना है, मुझे अंतर्मुखी होना है, अंतर्मुखी होने में सफलता मिलेगी। तो अंतर्मुखी जब होते हैं ना, तो यहां से जो डेटा अंदर गया हुआ है ना, वो सामने आ जाता है पूरा, आता है ना अंतर्मुखी होने से। तब कहा कि उसमें मौन का क्यों इम्पोर्टेंस बताया, तो उसमें बताते हैं कि वो जो सोना धोबन के पास जाती है वो पुत्री, फिर तो वो छुप छुप के वहां काम करती है, माना उस सोना धोबन को पता भी नहीं चले, ऐसे चुपचाप से जाकर अमृत वेले वो सेवा करके चली आती है। और सोमा धोबन रोज रोज ये देख रही है कि मेरे घर कैसे सफाई, क्योंकि उसके पास भी बोलते सात बेटे बहू थे, और वो बहू है क्योंकि धोबन की बहू है, तो सेम काम होगा ना उनका भी, सफाई करने में लगना है ना उनको भी। पर कहा कि वो बहुएं काम करने के नाम पे काम नहीं, लड़ाई झगड़ा ही करती रहती थी, और इधर ये चुपचाप से आके साफ कर रही, तो सोना धोबिन को एक बार लगता है कि अचानक से मेरे बहू में कैसे परिवर्तन आ गया है, जो लड़ती झगड़ती थी, काम कुछ नहीं करती थी, अब ये सफाई कहाँ से हो गई। तो पूछती है कि आप सफाई कर रहे हैं? तो कहते नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं। तो कहा कौन? तो फिर वो जागृत रह के देखती है कि कौन आता है और कौन सफाई करके जाता है। तो जागृत रहती है और देखती है कि ये पुत्री जो जिसका नाम धर्मवती था, वो आती है और वो सफाई करती है। और ये लंबा समय चला, कहा एक साल तक ऐसे सफाई होती रही। और तब वो सोमा धोबन उसको पूछती है, चुपचाप से आकर, मौन भाव से आकर मेरे घर के चबूतरे को इस तरीके से साफ सुथरा करके आप जाती हो, आखिर भी मन में क्या मंशा है, कौन सी कामना के साथ तुम ये करती हो? और वो फिर कहानी सुना देती है जो पहले था कि वैधव्य योग है और मुझे बताया गया है, तो आप अगर साथ में चलेंगे, क्योंकि वो कहती है, और वो कहती है हम ब्राह्मण की बच्ची हूं मैं, तो ब्राह्मण और तुम, मैं धोबन और तुम ब्राह्मण, मेरे ऊपर तो पाप चढ़ा है ना, ब्राह्मण धोबन माना कि नीचा ही हो गया ना काम, तो सफाई का काम, और उसके पास एक ब्राह्मण जाके काम करे, तो ये तो मेरे ऊपर पाप चढ़ा, अब मुझे इसको क्लियर करने के लिए आप जो कहेंगे मैं करूंगी। तो कहती आप मेरे साथ चलो, और वो मान जाती है। तो इसका भाव क्या है कि जब हम अंतर में जाएंगे तो का मौन भाव से सफाई कर ली, और वो लड़ाई झगड़ा भी उधर उधर धीरे धीरे बंद हो गया। तो इसका भाव क्या है, अंदर में जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, हमारा भी चल रहा होता है या नहीं चल रहा होता है? कौन सा, यहां जो हुआ था, यहां जो मैं भी बॉडी कॉन्शियस में आकर, सामने वाला भी बॉडी कॉन्शियस में, जो हमारा व्यवहार हुआ था वो अंदर आता है फिर वहां पे, और वो जो चादर है चित्त की, वो ओरिजिनली किसकी बनी हुई है? आत्मा का प्रकाश इसमें पहुंच रहा है ना, तो आत्मा के सात गुणधर्म उसमें है, तो ओरिजिनल जो लेयर है किसकी है? ईश्वरीय गुणों की, जो कहते हैं जो बाप के संस्कार वो आत्मा के संस्कार और देवी गुणों की भी है ना, वो उसकी पहली लेयर। और फिर ये वावले जो आ रहे हैं वो बॉडी कॉन्शियस वाला, वो आसुरी विकारी मायावी, इन दोनों की पटेगी क्या? पटेगी का मतलब हमारे शरीर में भी अगर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस चला जाए तो हमारे शरीर के अंदर हमारी सेफ्टी का साधन है, सिक्योरिटी सिस्टम है, क्या है, हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ना शुरू कर देगी कि फॉरेन मटेरियल आया है, ये क्या करेगा, इस शरीर को क्षति पहुंचाएगा, इसके स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा और इसलिए डट कर उसके साथ मुकाबला करती है। और उसी चक्कर में तो दस्त बुखार होते हैं, और क्यों होते हैं, वो इम्यूनिटी लड़ रही है उस वायरस से, वो बैक्टीरिया जो आया हुआ है, जो हानि पहुंचाने आया है। ऐसे ही चित्त में भी प्रोग्रामिंग कौन सी है, दैवी गुणों की प्रोग्रामिंग, कौन सी है, ईश्वरीय गुणों की, उसको भी प्रोग्रामिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो विजातीय फॉरेनर आए ना, उसको यहाँ जड़े नहीं जमाने देना, उसके साथ कंफ्लिक्ट करना, उसके साथ संघर्ष करना, यही हमारे अंदर चलता है। क्यों? क्योंकि अंदर सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा, कि वो चादर जो बनी ही ईश्वरीय गुणों की है, दैवी गुणों की है, उसको पावर दे दिया गया, अधिकार दिया गया है कि इसके अपोजिट कोई आए तो उसके साथ लड़ना। उसी लड़ने के चक्कर में तो हमारा चैन बेचैन में बदल जाता है, हमारी शांति अशांति में बदल जाती है, हमारा सुकून बेसुकून हो जाता है। यहाँ पर भी क्या होता, कहा ना, उस लड़ने के चक्कर में ही तो बुखार आ गया, उस लड़ने के चक्कर में ही तो दस्त आ गए, उस लड़ने के चक्कर में तो फोड़े फुंसी पस आ गया, तो यहाँ पे भी पस के रूप में अशांति फूट रही है, यही हो रहा है, बेचैनी फूट रही है। तो कहा ना, अंदर लड़ाई करती रहती थी, वो काम पे काम तो नहीं करती थी, लड़ाई करती रहती थी, एक्चुअली लड़ाई क्या हो रही थी, उनकी प्रोग्रामिंग की हुई है। तब कहा कि ये जब चल रहा हो ना हमारे अंदर, हमारा फर्ज बनता है हम उसको मौन में रहकर साक्षी होकर देखें। जैसे जैसे हम उसको साक्षी होकर देखेंगे, वो वहां पे लड़ाई धीरे धीरे क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और वो चित्त रूपी पर्दा, वो चबूतरा कहो चादर कहो, साफ सुथरी हो जाएगी। अंदर फिलामेंट आत्मा का प्रकाश बाहर आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो बुद्धि का कनेक्शन ज्ञान के साथ सतत रहेगा या नहीं रहेगा, तो सुहाग अखंड होगा या नहीं होगा, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन सदा रहेगा या नहीं रहेगा, तो सुहाग अखंड रहेगा या नहीं रहेगा। तो पता चला, सुहाग अखंड बनाने के लिए सोमती अमावस्या का व्रत रखना पड़ता है। हाँ? अमावस्या माना ही पूरी चादर काली हो गई है, पूर्णिमा माना सफेद थी, अमावस्या माना काली। ऐसे समय पर बाबा आके कहता है, अब साक्षी होके देखो इसको। और तब जब साक्षी होकर देखेंगे, वो लड़ाई बंद होगी, आत्मा के वो सात्विक गुण रश्मियों के रूप में बाहर आएंगे और मैं उस फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाऊंगी जो भगवान की फ्रिक्वेंसी है, और दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, कनेक्शन इजीली हो जाएगा। कनेक्शन इजीली हो गया, चार्जिंग इजी हो जाएगी, तो अमावस वाला चांद पूर्णिमा की तरफ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो तब कहा, ये व्रत ये कहानी सुनना है, शिव की पूजा करना है, विष्णु की भी पूजा करते हैं, वो वट वृक्ष को भी वो धागा बांधते 108 बार, परिक्रमा भी 108 बार करते हैं, मौन भी रखते हैं, तब जाके अखंड सौभाग्य। लेकिन होता है, ये सूक्ष्म बातें थी, कितने ही अखंड व्रत रख लिए लेकिन कितनी स्त्रियां फिर भी विधवा होती हैं। लेकिन ये वाला व्रत रखना है तो शिव की पूजा मतलब मन मना भव की स्थिति में रहे, विष्णु की पूजा मतलब मध्याजी भव की स्थिति बनाए, कल्प वृक्ष को धागा बांधना मतलब कल्प वृक्ष के ज्ञान को बार बार सिमरण में स्मृति में लाना, परिक्रमा करना मतलब स्वदर्शन चक्र को बार बार फेरना, तब जाके ये सब बुद्धि में होगा समझा हुआ कि कैसे अंदर का मैकेनिज्म चल रहा है, तब मेरी रुचि बढ़ेगी एकांत में बैठकर अंदर में चल रही इस लड़ाई को साक्षी होकर देखने की, और उसी साक्षी होकर देखने में लड़ाई खत्म होगी, आत्मा से कनेक्शन जुटेगा तो परमात्मा से भी कनेक्शन जुटेगा। यही कहा था हमने पहले दिन, लोगों को ज्ञान देते हैं तो हम अपने आप से ही डिस्कनेक्ट हो गए, तो पहली स्टेप है कनेक्ट टू योर सेल्फ, देन कनेक्ट टू गॉड। खुद को नहीं जाना तो खुदा को नहीं जान सकते, खुद को रियलाइज नहीं किया तो खुदा को रियलाइज नहीं कर सकते हैं, और खुदा को रियलाइज नहीं कर सकते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं होगी, तो निगेटिविटी जीवन से कभी खत्म नहीं होगी। तो क्लियर हुआ, सोमवती अमावस्या के दिन आपका उद्घाटन हुआ था तो व्रत में कहां तक आगे बढ़े हो तो अभी यही पूरा करते हैं। हम जानते हैं मधुबन में जब हम आते हैं तो बेशक इतना बड़ा संगठन वहां भी थोड़ी मिलता होगा, तो थोड़ी बहुत आपस में हाय हेलो हो जाती है मधुबन वालों से भी हम, क्योंकि बार बार थोड़ी आएंगे तो ये सब हो जाता है। लेकिन यहां से एक संकल्प करके जाओ, मौन के महत्व को मुझे जीवन में प्रधानता देनी है, हमेशा सिर्फ बाहर से अंदर भरने से उन्नति नहीं होगी। आज साइंस भी, हाँ क्या वो एक साइंटिस्ट ने क्या बोलते हैं उसको, ऑटोफेजी, कि जिसमें फास्टिंग करो और उस फास्टिंग से आपका हेल्थ क्योर होगा, जो दवाइयों से भी क्योर नहीं हो, तो जरूरी नहीं कि बस डालते ही जाओ, लेकिन यहां से निकलने की मार्जिन तो दो, अंदर जो कूड़ा कचरा उसको निकलने की मार्जिन देने के बजाय सिर्फ भरे जा रहे भरे जा रहे। तो हमारा जो सतत अभ्यास हो गया है कि सिर्फ कानों में कुछ जाता रहेगा ना, तभी हमारा योग लगेगा, थोड़ा इससे ऊपर उठो। प्राइमरी में ही थोड़ी रहना है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हायर, हायर से फिर कॉलेज, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी, नहीं तो बाबा कहेंगे जामड़े के जामड़े रह गए बच्चे मेरे हाँ तो कौन से बच्चे बनेंगे बाबा के, पीएचडी वाले। तभी का लॉकर में मत रखो कुछ भी, सफलता पानी है तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करो, ज्ञान को खुद यूज करो, जिसको कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। हम तो दूसरे की घोटी भी बस डालते जा रहे हैं, दूसरों का ही घोटा हुआ डालते जा रहे हैं ना, तो हम अपनी घोटेंगे अवश्य ही जीवन में परिवर्तन आएगा, और तब कहेंगे मानसरोवर में डुबकी लगाई थी तब साधारण थे, डुबकी लगाकर बाहर आए परी और परिजादे बन गए, अर्थात ही क्या, परी माना शुभ्र, पूर्णिमा हो गया ना, चादर निर्मल हो गई ना, चित्त निर्मल हो गया, तो निर्मल चित्त से अंदर फिलामेंट वाला जो आत्मा जो सारा बाहर निकल रहा है, तो बाहर की भी सेवा हो रही है, परोपकार अपने आप हो रहा है मेरे से, और उससे सतत कनेक्ट हूं, तो उसकी भी टचिंग मुझे कैच होती रहेगी। तो समय पर क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी टचिंग को मैं कैच भी कर लूंगी और जीवन सचमुच सार्थक बन जाएगा। ओम शांति।